सागर से गहरा है प्यार तुम्हारा, सागर से गहरा है प्यार तुम्हारा। ओ बाबा ओ बाबा ओ बाबा, सागर से गहरा है प्यार तुम्हारा। ओ बाबा ओ बाबा ओ बाबा, साथ तेरे है हर पल सुनहरा, साथ तेरे है हर पल सुनहरा। ओ बाबा दिल ने पुकारा, ओ बाबा सागर से गहरा है प्यार तुम्हारा। ओ बाबा ओ बाबा ओ बाबा।
ओम शांति। आज बड़े सौभाग्य की बात है कि इंटरनेशनल योगा डे के प्रोग्राम संपन्न कर आदरणीय राजू भाई जी हम सबके बीच आज सुबह ही पहुंचे हैं। आपका हम बहुत बहुत तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं। स्वागत है, स्वागत है। आदरणीय राजू भाई जी की सबसे बड़ी विशेषता जो मैंने देखी है, बरसों के नजदीक होने पर यज्ञ के इतना समीप होने के बावजूद, इतनी जिम्मेवारियों को निभाने के बावजूद, आपको हमेशा मैंने डाउन टू अर्थ देखा है। इतना निर्माणचित है आप। आज अभी अभी मैं जाकर मिली और कहा कि शाम को हम चाहते हैं कि 7 से 8 आप आज कमेंट्री से सबको विशेष अनुभूति कराओ, तो तुरंत ही उन्होंने कहा ठीक है बहन। दूसरी विशेषता आपकी ये देखी है कि आपके हर कार्य में इतनी सिंसियरिटी है, चाहे आज यज्ञ से आपके पास पूरा मुरली डिपार्टमेंट है, हमेशा हमें नवीनता और रचनात्मकता अलग अलग स्व उन्नति के प्रोग्राम्स के रूप में आपसे मिलती रहती है। सिंसियरिटी आपकी इतनी है, जब से आपको रूरल डेवलपमेंट विंग की जिम्मेवारी सौंपी गई है, तब से ही रूरल डेवलपमेंट विंग को आपने 4 चांद लगा दिए हैं। बहुत कम समय में बजाओ ताली, बहुत कम समय में इतनी ऊंची उड़ान भर करके ऐसे प्रैक्टिकल प्रूफ्स दिए हैं जो गवर्नमेंट को भी एक नई आंख खोलने वाली सीधी आध्यात्मिक शक्तियों के रूप में मिलकर के दिखाई है। तो हमारे इन सब वरिष्ठ महारथी भाई कहें, पांडव कहें, एक एक अपने आप में बाबा के बहुत विशेष रतन हैं, जिन्होंने पास से हमें बहुत बहुत सीखना है। आज मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आज का जो हमारा विषय है त्यागी और तपस्वी जीवन, वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में वो जीवन को मजबूत करना क्यों जरूरी है और कैसे हो सकता है, इस विषय पर प्रकाश डालेंगे आदरणीय राजू भाई जी।
ओम शांति। बाबा के इस तपोवन में, तपस्या भूमि में योग तपस्या करने का आपको गोल्डन चांस मिला। पहली बार सबको ये चांस मिला है ना, उड़ीसा वाले तो पहली बार यहाँ तपस्या कर रहे हैं। ये बाबा की, दादियों की, मीठी मम्मा की, दीदी की तपस्या स्थली है। रग रग में, अंग अंग में कहते हैं तपस्या समाई हुई है। इस मधुबन के कोने कोने में बाबा का त्याग और तपस्या दिखाई देता है। भले कितने भी स्थान पूरे विश्व के अंदर अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर बने हैं, लेकिन मधुबन जैसा है कोई? मधुबन में बाबा ने जिस तरह से इसको सींचा है, वो त्याग की खुशबू, तपस्या की खुशबू ये भूमि ही अपने आप में देती है। बाबा का पूरा जीवन त्यागमय जीवन रहा। साकार में जिस दिन से शिव बाबा की प्रवेशता हुई, एक धक से बाबा ने सब कुछ त्याग दिया। स्थूल में भी बाबा का इतना नाम, इतना मान पद प्रतिष्ठा थी, लौकिक में भी लोग बड़ा सम्मान से बाबा को मानते थे। जवाहरात का बिजनेस था, राजाओं महाराजाओं के साथ आना जाना, उठना बैठना। वो पहली वाली फोटो तो आपने देखी होगी ना बाबा की, वो कितनी रॉयल सूट बूट में दिखाई है। लेकिन जिस दिन से शिव बाबा मिले, निश्चय हुआ, एक धक से बाबा ने वो पुराने जीवन का त्याग कर दिया। देह सहित देह के सब धर्मों संबंधों का त्याग करके शिव बाबा का माध्यम बन गए। उस समय बाबा के पास जो अपनी प्रॉपर्टी थी, बहुत बड़ा बिजनेस था, उसकी भी परवाह नहीं की। भागीदार को सौंप करके कहा, जो तुमको देना है दे दो, जो लेना है ले लो। एक धक से निर्णय लिया और चले आए हैदराबाद। और एक संकल्प से ही सब छोड़कर, और जो कुछ प्रॉपर्टी थी उसको कन्याओं माताओं के आगे समर्पित कर दी। जिस दिन समर्पित की, ओम मंडली का ट्रस्ट बनाया, उसके बाद बाबा ने उस पैसे को हाथ ही नहीं लगाया, पूछा भी नहीं कैसे खर्च हो रहा है, कहाँ जा रहा है, बच्चे संभाल रहे हैं। दे दिया तो उससे निश्चिंत हो गया। और 14 साल तक बाबा की उसी संपत्ति से इतने सब भाई बहनों की पालना हुई। पूरा 1936-37 से लेकर के 50 तक। और उसके बाद जब भारत में माउंट आबू को चुना, कितने भी पेपर आए, आर्थिक पेपर सबसे ज्यादा आए, लेकिन उस पेपर में भी बेफिकर बेगमपुर के बादशाह, बच्चे जो छोड़ा है उसके पीछे आंख नहीं जानी चाहिए। बाबा का क्या एक महामंत्र रहा, मरने से मांगने से मरना भला, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना। बहुत बड़ा पेपर था वो, तो आप सबने सुना होगा। 1.5 साल में पूरी संस्था को हिलाने वाला पेपर था, 300-400 लोग खाने वाले, और एक टाइम के भोजन की व्यवस्था न हो, कहीं से आवक भी न हो, कोई कमाई का सोर्स भी न हो, तो जो निश्चय बुद्धि नहीं थे, थोड़ा बहुत अपनी मत से चल रहे थे, उन्होंने सोचा कि हम तो जाएं, हमारी उम्र है, हम कमा सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। तो बाबा ने उस समय उन्हें वही परिभाषा सुनाई कि आप सब तो समर्पित हो गए हो और भगवान को अपने जीवन अर्पित की है, इसलिए विनाशी धन के पीछे कहीं पर भी भटकने की जरूरत नहीं है। आपके पास जो बाबा ने धन दिया है वह विनाशी धन है, ज्ञान धन है, गुरुओं का धन है, शक्तियों का धन है, जाओ इसको बांटो। ये धन बांटने से वो धन आ जाएगा, उसकी कमी नहीं रहेगी। तो बाबा ने उस समय भी सबको स्थूल में भी किसी तरफ आकर्षित होने नहीं दिया। और जो बाबा के पक्के निश्चय बुद्धि बच्चे थे, उन्होंने त्याग का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल प्रस्तुत किया। मालूम होगा जब सेवाएं प्रारंभ की, बिल्कुल पैसा नहीं था यज्ञ के पास, चार आना भी लेकर के, एक रुपया लेकर के निकल जाते थे ट्रेन में, और वहां पर सेवा करके कई बार टीटी की सेवा, जो ट्रेन में अधिकारी मिलते थे उनकी सेवा करके उनसे टिकट बनवा के चले जाते थे। और जाते थे तो 5-10 बहनें एक साथ रहती थी, कुछ भी नहीं मिलता था, कुछ भी नहीं था, मांगना नहीं किसी से, तो जो छोटी छोटी आलू आती ना, वो आलू 2 टुकड़ा किया, पानी का रस्सा बनाया, नमक डाला और उसमें पका लिया, तीनों टाइम खा लिया आलू का रस्सा बना करके, थोड़ा सा आटा, रोटी बनाई और रस्सा बनाया। बहुत त्याग का एग्जाम्पल प्रस्तुत किया, फाउंडेशन कितना मजबूत है त्याग का। कोई साधन नहीं, कोई सुविधाएं नहीं, पैसे का पता ही नहीं, और ऐसा जीवन त्यागमय बना करके अगर कोई कुछ दे के गया। बाद में जब सेवाएं शुरू हुई तो लोगों ने ऑफर की, जो भी मिलता था, बहनें कहती थी हम यूज नहीं करेंगे, ये बाबा के यज्ञ में भेज देंगे, बाबा वहां बैठा है, वहां जरूरत है, मैं तो बाद में खा लूंगी। तो लोग अगर कुछ दे के भी गए तो कभी भी वो स्वीकार खुद के लिए नहीं किया, सब कुछ उठा करके, यहां तक अगर फल भी आ जाते थे तो भी वो पार्सल भेज देते थे। तो ऐसी त्याग की फाउंडेशन के आधार से यज्ञ का प्रारंभ हुआ है। और तपस्या तो बाबा ने खूब कराई, एक बाबा दूसरा न कोई, सच्चे दिल की तपस्या कि बाबा के सिवाय और कहीं भी किसी भी देहधारी में आंख न जाए, यही सच्ची तपस्या है। और इस तपस्या के बल से खुद भी ब्रह्मा बाबा ने तपस्वी जीवन व्यतीत की। और यहां रह करके जब ये कुटिया बाबा की देखी है, ये कुटिया और वो कमरा, अभी तो स्थाई रूप बना दिया है। जब मैं आया था 71 में बाबा के अव्यक्त होने के बाद, उस समय भी ये जो खजूर के पत्ते होते हैं, झाड़ खजूर और केले के पत्ते की झोपड़ी थी, हर साल बनाते थे, हर साल बिगड़ जाते थे। बाबा इसी कुटिया में बैठ करके बच्चों से मिलते थे, पत्र व्यवहार करते थे, जितने पत्र आते थे उनका उत्तर देते थे। और कमरा इतना छोटा सा, अभी तो उसको बड़ा रूप दिया, बड़ा बनाया है बैठने के लिए, जहां गद्दी है और चारपाई है, दरवाजा पहला है, उतना ही कमरा था। अभी योग का रूम बना है इसलिए थोड़ा सा उसको तोड़ के आगे बढ़ाया गया है। और बाबा की लेटरिन बाथरूम कहाँ थी, ये जो स्थान है ना जहां पर अभी बाथरूम बने भाइयों के साइड में, चक्की के पास में, इधर खुले में टाट लगा हुआ था, आसमान छत खुली है, और बाबा का वहीं लेटरिन बाथरूम था। लोटा लेके बाबा जाता था। और जब ये पहला भवन बना, ये हवाई महल इधर वाला जो बिल्डिंग है ना यहाँ हाल के बाजू में, तो सभी ने बाबा को ऑफर दिया, बाबा अभी ये पुराने मकान में तो पानी टपकता है, कोई सुविधा नहीं है, ये नया आप यूज करो। तो बाबा ने क्या जवाब दिया, शिव बाबा ने इस पुरानी जुत्ती को लिया है, शिव बाबा पुरानी जुत्ती में बैठा है, बाबा कभी भी नए स्थान पर नहीं रहेगा, वो बच्चों के लिए। बाबा ने उसको स्वीकार नहीं किया। ऐसी त्यागमय तपस्या में जीवन व्यतीत की, जो आज यज्ञ उस त्याग और तपस्या के आधार से इतना आगे फला है, बढ़ा है। ब्रह्मा की तपस्या है यहाँ, इस भूमि के कण कण में उसकी याद आती है। कहीं पर भी आप जाएंगे, बाबा की बैठक, बाबा की चारपाई, बाबा की कुर्सी देखो, तो आपको लगेगा कितना बेगर टू प्रिंस, बिल्कुल बेगरी पार्ट। और इतना नशा, इतना नशा कि प्रिंस बनने वाला है बेगर। काम क्या कर रहा है पता, उस समय क्या काम करते थे। अभी तो ये बॉयलर्स हमारे स्टीम पर हैं, मिट्टी के तेल पर हैं, बहुत सारे साधन हैं, अभी सोलार हैं। उस समय छोटी छोटी लकड़ियां इकट्ठी करके ऊपर कोयले का एक गोला बनाते थे, कोयला और गोबर मिक्स करके। गाय थी यहाँ पर, गाय का गोबर और कोयले को छान करके जो चूरा उसका होता है वो उसको मिक्स करके बाबा सवेरे सवेरे खुद जाके बैठ जाता था, आओ बच्चे गोला बनाएंगे, दादियों को लेकर के। और गोला बनाते बनाते कभी कभी ऐसे हाथ में उछालता था, देखो बच्चे श्री कृष्ण के हाथ में विश्व का गोला आने वाला है। कितना नशा था। बाबा को कहते, बाबा बहुत छोटा काम, इसको छोड़ो ना, बच्चे कर लेंगे। बाबा कहता, बच्चे कोई काम छोटा नहीं होता, बच्चे इस काम को करते हुए नशा कितना, खुशी कितनी रहती है। तो बाबा वो ऐसा ही कार्य करते हुए इतना न्यारा प्यारा निश्चिंत, और ऐसी तपस्या थी कि अगर उस समय कोई आ जाता था वीआईपी देखने बाबा से मिलने के लिए, तो कहता था दृष्टि देता हूं और उसको श्री कृष्ण का साक्षात्कार हो जाता है। आप विचार करो कितनी अच्छी स्थिति होगी बाबा की। देवगा नहीं आता था कि मैं छोटा काम कर रहा हूं, कोई मिलने वाला आया पहले इसको छोड़ दो जाऊं, नहीं बच्चे ले आओ उसको मिलाने के लिए। उस काम करते हुए भी इतनी तपस्वी जीवन। तपस्या क्या है हमारी? आत्मिक स्थिति में रहना ही तपस्या है। ये आत्मा जो इस भ्रकुटी में है ना, ये हमारा कुटिया है तपस्वी की। चलते फिरते इस कुटिया में बैठ करके तपस्वी जीवन का अनुभव कर सकते हैं। तो ब्रह्मा बाबा ने यह अभ्यास किया, देह अभिमान का संपूर्ण त्याग और आत्म अभिमान की इतनी अच्छी तपस्या। किसी भी प्रकार का मैं बड़ा हूं, शिव बाबा का रथ हूं, मेरा तो इतना सम्मान होना चाहिए, इतनी ऊंची गद्दी होनी चाहिए। बाबा कभी कहीं जाते थे कहते थे, बच्चे दो या तीन से ज्यादा नहीं आना मिलने के लिए स्टेशन पर। बाबा ट्रेन से जाते थे, उस समय प्लेन तो थे नहीं इतने। बॉम्बे गए, दिल्ली गए, कानपुर गए, कई जगह पर बाबा साकार में गए। तो जब कहीं यहां से जाते थे तो पहले ही बच्चों को पत्र लिख देते थे, बच्चे स्टेशन पर भीड़ नहीं करना, फूल वूल लेकर के नहीं आना, बाबा तो बहुत साधारण है ना, सिंपल, इसको कोई जानता थोड़ी है, बच्चे तो गुप्त है, इसलिए दिखावा नहीं करना। ऐसी त्याग वृत्ति जो बाबा ने कभी भी अपने को प्रत्यक्ष करने के लिए सो नहीं किया, बहुत सिंपल जीवन जी, फूल मालाएं भी स्वीकार नहीं की। कोई फोटो निकालता था तो कह, किसका फोटो निकाल रहे हो, शिव बाबा का फोटो तो निकलता ही नहीं है, तुम इस देह का फोटो निकाल के क्या करोगे। इतना निरहंकारी, इतना निर्माण चित, इतना त्याग मूर्त, नाम की महिमा, नाम की कोई प्रशंसा चाहिए, न मान चाहिए, न शान चाहिए, न पद चाहिए, सब कुछ त्याग दिया। अब देखो मुरली के अंदर, बच्चे मैं नहीं पढ़ाता हूं, कोई अच्छा काम करे बाबा की कोई महिमा कहने लगे, बाबा आपने ये किया, आपने ये किया, बाबा कहता बच्चे ये कुछ नहीं करता, ये तो बीच में दलाल है, वो करता है या बच्चे करते हैं। इतना निरहंकारी, इतना त्याग कर दिया नाम का भी। कहीं पर भी मुरली के अंदर आता है, मैंने मुरली बहुत अच्छी चलाई, मैंने आज बच्चों को बहुत अच्छा रिफ्रेश किया, बच्चे तुम बाबा को याद करो, शिव बाबा ने किया, शिव बाबा ने किया। नाम का भी त्याग कर दिया, महिमा का भी त्याग कर दिया। स्थूल में भी अगर कोई बहुत प्यार से ठंडी पड़ रही है, एक बार एक माता बाबा के लिए बहुत अच्छा स्वेटर बना के आई, बाबा को स्वेटर पहना दिया, बाबा ये पहनना है आपको ही पहनना, मैं आपके लिए लाई हूं। हाँ बच्ची ठीक है ठीक है। और जब चली गई तो उतारा स्वेटर, एक बच्चे को दे दिया, बच्चे तुम पहनो। माता को पता चल गया, आई बाबा से झगड़ने, बाबा ये क्या किया आपने, मैंने आपके लिए बनाया था। बच्ची अभी जिसको दिया ना वो बाबा को याद करेगा, उसको बाबा की याद रहेगी, तुम देती ना तो तुम्हारी याद आती, बाबा ने दिया ना बाबा को याद करेगा, बाबा को जरूरत नहीं है। तो ऐसा बाबा त्याग का एग्जाम्पल बने, जो कोई स्थूल में भी कोई चीज नहीं स्वीकार की, कोई साधन स्वीकार नहीं किए, कोई अपने नाम का बैंक बैलेंस नहीं बनाया, कोई प्रॉपर्टी नहीं रखी, सब बच्चों की, या बाबा की है या बच्चों की, इतना ट्रस्टीपन का भाव आ गया। त्याग किसको कहते हैं, त्याग माना सब छोड़ दिया, नहीं सब में था, बीच में था सबके, लेकिन मैंपन का त्याग, मेरेपन का त्याग। आप भी सब यूज करो, बाबा कोई चीज मना नहीं करता, कहता बच्चे यही ही सब साधन तुम्हारे लिए, लेकिन जहां तुम्हारी बुद्धि अटक रही है, लटक रही है, ये मेरा है मेरा है मेरा है, वही दुख दे रही है। दुख कोई दूसरा थोड़ी दे रहा है, कौन दुख दे रहा है, मैं और मेरा। और जिस दिन ये मैं और मेरे का त्याग कर दिया, उस दिन आत्मा सुखी हो जाएगी, सब चीजें जैसे बाबा ने प्राप्त करा दी, तृप्त हो गई। तो ब्रह्मा बाबा ने अपने मैंपन को त्याग किया, अपने मेरेपन को त्याग किया। बाबा को कभी भी कोई लौकिक संबंध से भी देख नहीं सकता था, इतना बाबा ने तपस्या की। बाबा की बहू, बाबा की बेटी, बाबा की पत्नी, सब साथ साथ थे दादा के, लेकिन सब होते हुए सब बाबा कहते थे, कोई दूसरे संबंध से संबोधन भी नहीं कर सकता था, बाबा बाबा बाबा। कितनी तपस्या होगी, विचार करो, सब लौकिक संबंध अलौकिक में परिवर्तन कर दिए। ऐसी दृष्टि, इतनी रूहानियत अपना ली। एक बार कहते हैं निर्मल शांता दादी थी ना, बाबा की बेटी, बाबा के सामने पहले पहले आई, पूछता है बाबा बच्ची पहचानती हो, तो जब ये पूछा पहचानती हो तो निर्मल संता दादा दादी को अंदर अंदर गुस्सा आ गया कि क्या बोलता है बाबा, जिसकी गोद में पली बड़ी हुई, जिसने हमको इतना लायक बनाया, वो पूछ रहा है तो मुझे पहचानती हो। तो बाबा मुस्कुराने लगा, समझ गया किस बच्ची ने इस देहधारी को बाबा समझा हुआ है। शिव बाबा पूछ रहा है बच्ची पहचानती हो, बाबा ने फिर अपना पहचान दिया, परिचय दिया कि मैं इसके द्वारा काम कर रहा हूं। तो शिव बाबा इसके द्वारा प्रवेश होकर के अपना काम करते हो, ब्रह्मा बाबा को एकदम छिपा दिया, गुप्त कर दिया। और ब्रह्मा बाबा ने इतना छिपाया अपने आप को, इतना छिपाया, जो कहता देखो हमारी यादगार भी कितना, एक ही मंदिर पूरे भारत में गाया हुआ है, छोटे छोटे होंगे और भी मंदिर, लेकिन ब्रह्मा का मंदिर तो अजमेर का ही प्रसिद्ध है। देवियों के कितने मंदिर बने, बच्चों के कितने मंदिर हैं, लेकिन ब्रह्मा बाबा का मंदिर भी कोई इतना नहीं है। और मुरली के अंदर भी बाबा कभी नहीं कहता मैं कुछ करता हूं, मैं पढ़ाता हूं, मैंने किया नहीं, बाबा पढ़ा रहा है। कोई सेवा हो गई, अच्छी सेवा हो गई, बाबा ने करा ली, बच्चों ने कर ली, मैंने किया कभी भी अपने पर नहीं लिया। तो बाबा ने इतना त्यागमय जीवन जिया, प्रैक्टिकल, लास्ट दिन तक भी कोई साधन, कोई स्थूल में सूक्ष्म में महिमा, किसी चीज को स्वीकार नहीं किया। हम बच्चों को और कोई नया कदम तो लेना नहीं है, कहता बच्चे कदम पर कदम रखो। ब्रह्मा बाबा ने कैसे ट्रस्टीपन की भावना से, बाबा की अमानत है, एक पैसा भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, यज्ञ की एक कौड़ी भी व्यर्थ नहीं जानी चाहिए, इतना बाबा ने ध्यान रखा और सबका खिंचवाया, कुछ भी हो कहीं भी व्यर्थ नहीं गवाना, इसी बाबा की अमानत। बाबा ने अर्पित की, ब्रह्मा बाबा ने अर्पित की, और अर्पित करने के बाद ट्रस्टी बन करके उसको संभाला और बच्चों को भी ट्रस्टी बना दिया। ट्रस्टी माना ईमानदार, जिसने बहुत ध्यान से उस चीज को यूज किया उसको ट्रस्टी कहा गया, जिसने अपनेपन का लगाव नहीं रखा उसको ट्रस्टी कहा गया। तो बाबा निमित्त बन गया, निर्माण बन गया, अनासक्त बन गया और ट्रस्टी रहा, इसलिए त्याग की एक मूर्ति बन गया। हम सब बच्चों को भी कहता है, बच्चे जो साधन है, जो सुविधाएं हैं, जो आप सबको श्रेष्ठ कर्मों से प्राप्तियां हुई हैं, कभी भी उनको यूज करते हुए भी ममत्व नहीं रखना। यूज करो, मना नहीं कर रहा है, छोड़ दे नहीं, छोड़ के चले जाओ नहीं, लेकिन सबके साथ रहते हुए अटैच नहीं रहना, ये सब बाबा का है। मैं एक बार विदेश में गया, दादी ने इतना पक्का कराया था विदेशियों को, मुझे रोज एक नई गाड़ी में बिठा के ले जाते थे, यहाँ दिखाएंगे, वहां क्लास रखेंगे, ऐसे ऐसे 15 दिन तक मैं लंदन में रहा। तो जहां जाए कोई कहे बाबा के घर में चलो, हम सोचे सेंटर पर लेके जा रहा है, बाबा की दुकान पर चलो, ना बाबा की कौन सी दुकान है। हरेक के मन में बुद्धि में बाबा दादी ने इतना पक्का करा दिया, ये बाबा की गाड़ी, ये बाबा की दुकान, ये बाबा का घर, किसी के मुख से नहीं निकलता है मेरे घर में चलो, मेरी दुकान पर चलो। इतना ट्रस्टीपन का दादी जानकी को ऐसे बाबा ने नाम दिया, जनक माना विदेही, जनक माना ट्रस्टी। तो दादी जानकी अपने आप कितने लोगों को तैयार कर दिया वहां विदेश में, मैंने देखा। जिसके पास जाओ कोई नहीं कहता ये मेरी गाड़ी है, ये मेरी दुकान है, ये मेरा घर है, ये मेरे बच्चे है, सब बाबा का, सब बाबा का, सब सबके मुख पर आ गया है। और इसलिए कोई भी बात हो भी जाती है तो उसका दर्द नहीं, दुख नहीं, तकलीफ नहीं, नुकसान तो होते हैं। कलयुग के अंदर कई ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, अचानक कुछ हो जाता है, अगर ममता होगी, मोह होगा और उस नुकसान हो गया तो क्या होगा, दुख होगा, परेशानी होगी, कहेंगे भगवान ने इसको रक्षा नहीं की, बचाया नहीं, मदद नहीं की, दोषी उसको ही ठहराएंगे। इसलिए बाबा कहता पहले ही सब छोड़ दो ना, कुछ नहीं मेरा है, सब बाबा तेरा है, जहां ले जाना ले जा, जैसे चलाना चला। कहते एक सेठ जी थे ना, बहुत अच्छी तरह से खूब कमाया, बच्चों में थोड़ा प्यार था, मोह था, तो समझते थे हम जितना कमाएं बहुत अच्छा अच्छा कमा करके एक मकान इनके लिए बना दें। देखो तेरा फेरी करके इधर उधर से पैसा इकट्ठा करते गए, इकट्ठा करते गए, खाते भी नहीं कम खाते और छोटे से मकान में रहते, और बच्चों के लिए, पुत्रों के लिए, परिवार के लिए एक बड़ी कोठी बना के तैयार कर दी, 4-5 मंजिल का मकान बना के तैयार कर दिया, और रोज उसको देखते खुश होते रहते, क्या मेरे खून पसीने की कमाई, यहाँ पर ये बच्चा रहेगा, यहाँ पर ये रहेगा, यहाँ ये रहेगा, रोज माला जपते थे। एक दिन अचानक कुछ शॉर्ट सर्किट हो गई, अचानक उस बिल्डिंग में आग लग गई। जब आग लगी तो बच्चे चारों तरफ से दौड़ के आए, बाबूजी आपका वो जो मकान है ना वो जल रहा है, आग लग गई कहीं से, आग लग गई। बस सुनते ही उनको चक्कर आ गए, बेहोश होने लगे, तड़फने लगे, अरे मेरी सारी जीवन की कमाई सब है, मेरी आंखों के आगे जा रही है, अब मुझे नहीं जीना। बीपी बढ़ गया, टेंशन हो गया, एकदम बेहोश होने लगे। उनका एक बच्चा दौड़ के आया सामने से, बाबूजी क्या हुआ, क्या हुआ, कहते हैं देखो अब मुझे नहीं जीना है, मैंने सारी जिंदगी झूठ बोला, ठगी की, ये किया, पैसा इकट्ठा किया और इतनी बड़ी बिल्डिंग बच्चों के लिए बनाई और मेरी आंखों के आगे जल रही है, अब मुझे जीना नहीं है, तड़प रहे थे। बच्चा समझदार था, बोला बाबूजी, बाबूजी एक बात बताऊं, मैं बताना भूल गया, ये कुछ समय पहले ना मैंने एक सेठ से सौदा कर दिया था, इसको मैंने बेच दिया था और उसका चेक मेरे हाथ में है, ये अपनी नहीं है। ये बुद्धि में उसके चेंज किया, अपनी नहीं है, अपनी नहीं है, और जब चेक ऐसे दिखा दिया कहता अपनी नहीं है, बस उसका सारा बुखार उतर गया एक सेकंड में, अपनी नहीं है। अभी तक अपनी थी, तड़फ रहा था, और बुद्धि में जो उस बच्चे ने डाल दिया बाबूजी अपनी नहीं है, मैं बेच दिया, बिल्डिंग तो जल रही है लेकिन विचारों में चेंज आई, परिवर्तन ही मेरी नहीं है, बस शांति हो गई, चैन में आ गया। कहता कोई बात नहीं, जलने दो, मेरा तो पैसा आ गया। तो ये क्या है, आजकल की दुनिया का यही हाल है। अगर कहीं पर भी जरा भी अपनापन होगा ना, मेरा है, मेरा बच्चा है, मेरी पत्नी है, मेरा पति है, मेरी संपत्ति है, मेरी दुकान है, मेरा घर है, मेरी गाड़ी है, कहीं भी मेरा है तो समझ लो फेरा है। इसलिए बाबा कहते इसको त्यागो, इसको छोड़ो, कुछ नहीं मेरा है, कुछ साथ न लेके आए थे न साथ लेके जाएंगे, कहते हम सभी हैं लेकिन फिर भी बसेरा हम बना करके रखा है। इसलिए उस बसेरे से, उस बखेरे से अपने आप को निकाल लो, जीते जी सब कुछ बाबा को अर्पित करके बाबा को कहो, बाबा ये सब तेरा है, मेरा कुछ नहीं है। ये है त्याग वृत्ति। और ऐसा त्याग अगर आपने कर लिया, वैसे तो ब्रह्मा कुमारियों का त्याग बहुत प्रसिद्ध हुआ है दुनिया के लिए, उनको लगता है इनका बड़ा त्याग है। बाबा ने एक मुरली चलाई थी, बच्चे तुम्हारे त्याग से लोग डरते हैं, अभी त्याग या छोड़ दो, भाग्य दिखाओ अपना। क्या त्याग किया? अच्छा चलो सवेरे सवेरे अमृत वेले उठते हो ब्रह्म मुहूर्त में, थोड़ा नींद का त्याग करना पड़ता, ये त्याग है या भाग्य है? सवेरे सवेरे उठ करके प्रभु का सुमिरन करना, वरदान लेना, शक्ति लेना, जब उस समय सारे प्रकृति के तत्व ऑक्सीजन दे रहे हैं, चिड़ियाएं चहक रही हैं, ऐसे समय में उठ करके ऑक्सीजन लो, आप स्वस्थ रहेंगे, नहाओ धो, एक्सरसाइज करो, सैर करो, बाबा को याद करो, तो ये त्याग है या भाग्य है? दूसरा दिखाई देता है उनको कि इन्होंने रंगीन ड्रेस छोड़ दी, शादी ब्याह में फैशन छोड़ दिया, घूमना फिरना छोड़ दिया, बहुत बड़ा त्याग है, ये कुछ खाते नहीं बाहर, त्याग है ये कि भाग्य है? पैसा भी बचा, स्वास्थ्य भी बचा, संबंध में थोड़े समय के लिए लोगों को लगता है ये पता नहीं क्यों नहीं खाते, लेकिन बाद में जब पता चलता है, अरे भाई आप बहुत अच्छे हो, खाने से तो सब कुछ आज हो रहा है, लोग खिला पिला करके तो अपने बस कर रहे हैं, अधीन कर लेते हैं, और इधर उधर खा लिया तो कई प्रकार के आज फूड पॉइजन हो जाते। बाबा ने हम सबको त्याग नहीं कराया लेकिन भाग्य बना दिया, जो हमारी दृष्टि जाती नहीं किसी चीज, कितनी अच्छी अच्छी चीजें हमारे सामने आ जाएं, पानी आएगा क्या मुंह में? आएगा नहीं? आएगा ना, त्याग कर दिया, नहीं चाहिए। हम सब जानते हैं रोग की दवाई यही है, रोग है ये, सब रोग इसी से पैदा हो रहे हैं। इसलिए बाबा ने हम सबका भाग्य बनाया, जो बाहर के तमोगुणी तमो प्रधान लोगों के हाथ का बनाया हुआ तमो प्रधान भोजन छूट गया, वो ड्रेस छूट गई जिसमें कोई की आकर्षण हो, कोई की बुद्धि जाए, वैसा फैशन छूट गया, पहले ही मर गए, सफेद ड्रेस पहन लिया, पहले ही मर गए ना जीते जी, इसलिए बाबा ने सफेद ड्रेस पहना दी, बच्चे सबसे मर जाओ, तो कितना बड़ा भाग्य बना दिया। इसलिए त्याग नहीं है, ये बहुत बड़ा भाग्य है, हमारे जीवन से लोगों को दिखाई दे, हमारी वृत्तियों से लगे, कहीं पर भी ये फंसे हुए नहीं है। और दूसरी बड़ी बात एक ये है कि कैसी भी परिस्थिति आए, परीक्षाएं आए, उसमें अपने आप को चेंज कर लेना, उसमें अपने आप को एडजस्ट कर लेना, जैसा समय जैसी परिस्थिति जैसा वातावरण उसी अनुसार अपने आप को ढाल लेना, मोल्ड कर लेना, उस परिस्थिति में अपने आप को सेट कर लेना। उसके लिए अगर नाम का त्याग करना पड़े, महिमा का त्याग करना पड़े, स्थान का त्याग करना पड़े, सेवाओं का त्याग करना पड़े, सेंटर का त्याग करना पड़े, कर सकते हैं कि कहेंगे नहीं मैंने इतनी सेवा की, मैंने इतना मेहनत की, मैंने यहां जमाया, अभी ये आ गया अधिकार रखता है, सारे झगड़े तो इसी के ही है। अगर इससे मुक्त हो जाएंगे तो मैं समझता हूं आज सतयुग आ जाएगा। बाबा कहता बच्चे क्या लेके आए थे, तुमने कहां से अपना बना लिया, लौकिक छोड़ दिया, लौकिक में फंस गए, लोहे की जंजीर छोड़ दी तो सोने की जंजीर में फंस गया, आके कोई भी जंजीरों में फंसना नहीं, कोई अपना नहीं, सब बेहद में रहो, सब बेहद बाबा का है, बेहद के घर हैं, बेहद का बाबा है, बेहद की सेवाएं, चलो कुछ कायदे बनाए गए, कुछ नियम बनाए गए जिससे टकराव ना हो, लेकिन अगर और टकराव पैदा हो रहा है तो नियमों पर क्या फायदा, इसलिए बहुत अच्छा एकदम बेहद की भावना से, त्याग भावना से हम सब तपस्वी बन करके रहे। बेहद की वैराग्य वृत्ति सच्ची तपस्या है, सच्ची तपस्या है। तपस्या माना एक टांग पर खड़े हो जाना नहीं है। एक टांग पर खड़े हो गए, पानी में खड़े हो गए, हट कर लिया, खाना पीना छोड़ दिया, बैठ गए, ये कोई तपस्या है क्या? लेकिन ये तपस्या भक्ति मार्ग में जिन्होंने की उनकी बहुत महिमा है। और उन पर भगवान को प्रसन्न करना दिखाया है कि राक्षसों ने भी तपस्या से भगवान को खुश कर दिया और आशीर्वाद लिया, वरदान ले लिए। और ऐसे ऐसे राक्षसों ने तपस्या करके भगवान को प्रसन्न किया जो भगवान को ही मारने दौड़ने लगे। भस्मासुर की कहानी है ना, बाबा कभी कभी याद करता है, सुनते होंगे मुरली के अंदर, कहते एक असुर था जिसने ऐसी घोर तपस्या की जो भगवान शिव बाबा तो भोलानाथ है प्रसन्न हो गया। बच्चा बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत बहुत तपस्या कर रहा है, बच्चे मांग ले क्या चाहिए? उसने कहा हमको ऐसा वरदान दो मैं जिस पर हाथ रखूं भस्म हो जाए। अब भगवान बोल दिया तथास्तु, उनको पता नहीं था ये मेरे पर ही हाथ रखने लगेगा। तो कहते हैं जब उसको ये तथास्तु कहा तो सबसे पहले सोचा इसी भगवान को, इसको नष्ट कर दूं मैं, इसको भस्म करूं। तो भगवान आगे आगे भागे और वो पीछे पीछे उनके भागा। तो फिर कहते हैं भगवान ने फिर विष्णु की सहारा लिया, शिव बाबा ने विष्णु का सहारा लिया, ऐसे ऐसे दिखाते हैं कहानी में। और वो मोहिनी रूप रख करके उसके सामने प्रकट हो गए। और राक्षस जब सामने मोहिनी रूप देखा तो उस रूप ने बोला कि तुम मेरे साथ डांस कर सकते हो, मैं आपको अच्छा सा डांस दिखाती हूं। तो कहते जब वो डांस करने लगे, भगवान थे रूप था उनका वो मोहिनी रूप, और डांस करने लगे तो देखने लगा, बाद में बोलती है तुम भी मेरे जैसा करो ना। तो जब भगवान ने डांस करते करते अचानक ये दृश्य रखा, अपना सिर पर अपना हाथ रखा, तो असुर ने भी अपना हाथ अपने सिर पर रख लिया और सिर पर हाथ रखा वो भस्म हो गया। ये भस्मासुर की कहानी है, यही है ना, सुना होगा आप लोगों ने कि भस्मासुर को कैसे भगवान ने फिर भस्म किया। वरदान तो दे दिया लेकिन उसने खुद को खुद ही भस्म कर लिया। तो बाबा भी कई बार मिसाल देता, मेरे बच्चे भी भस्मासुर कभी कभी बन जाते हैं, वरदान ले लेते हैं तो उसको गलत तरह से यूज करने लगते, अपने आप को भस्म कर लेते। इसलिए ऐसा कभी नहीं करना कि हम जिसने वरदान दिया उस वरदाता के लिए ही कुछ न कुछ उल्टा करना लगे, श्रीमत का अवज्ञा कर लें। भगवान को कौन बिगाड़ सकता है, लेकिन कई बच्चे फिर ऐसा सोच लेते। तो इसलिए तपस्या जो है ना वो है एक रस स्थिति का आसन, एक रस स्थिति के आसन पर, भ्रकुटी आसन पर बैठ जाओ। और एकाग्रता है मन और बुद्धि की, एक टांग पर खड़े होने वाली एकाग्रता नहीं है, लेकिन मन और बुद्धि की एकाग्रता से एक रस स्थिति में बैठ करके एक परमात्मा को एक टिक स्थिति से याद करना, जिससे प्रेम शांति सुख आनंद उसकी किरणें उसकी शक्तियां हमारे जीवन में समाती जाएं, ये है वास्तव में तपस्या। अब इस तपस्या के लिए एक तो चाहिए बहुत अच्छी लगन, नहीं तो योग में बैठते हैं ना, जब आप भट्टी में आए हो अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे भी आपको भी। कभी कभी आपने देखा होगा बाबा एक हठ योगियों के म्यूजियम को याद करता है, हठ योगियों का म्यूजियम होता है ना जयपुर में है, तो वो म्यूजियम में दिखाया है कोई एक टांग पर खड़ा है, कोई उल्टा टंगा है, कोई कैसा कर रहा है, कोई कैसा कर रहा है। तो बाबा भी कहता है मेरे बच्चे तपस्या में योग में बैठते हैं तो थोड़ा समय तो ठीक रहते हैं, कभी ऐसे झूमते हैं, कभी ऐसे झूमते हैं, कभी ऐसे झूम जाते, कभी मुंह खुल जाता ऊपर। ये तपस्या है क्या? अरे जहां लगन है, प्यार है, सच्चाई है, एकदम बाबा कहो और समा जाओ। कितनी अच्छी जीवन बाबा ने बनाई है, कितनी निश्चिंत जीवन बनाई है, कितनी प्राप्तियां कराई हैं। संगम का जीवन तो देखो, किस कीचड़ से निकाला है, क्या खाते थे, क्या पहनते थे, कैसे रहते थे, क्या जीवन थी। एक बार मैं एक जगह गया, एक भाई मेरी गाड़ी चला रहा था, गाड़ी चलाते चलाते मेरे से कहता है, भाई जी मैं अपना अनुभव सुनाऊं। हमने कहा जरूर सुनाओ। तो गाड़ी चलाते चलाते कहता है, भाई जी मैं अपने लौकिक जीवन में ना रावण का भी बाप था। रावण का बाप क्या होता है भाई? बड़े नजर नशे से बहुत अच्छे तरह से बोल रहा था, रावण का मैं बाप था। मैं क्यों, क्या किया आपने? कहता ऐसा कोई विकार, ऐसा कोई संस्कार जो रावण के अंदर हो उससे कई गुना मेरे अंदर ज्यादा था। और मैं अगर अपने घर से बाहर निकलता था ना, सोने चांदी की दुकान थी उसकी, सब लुटा दिया उसने, शराब में, कबाब में, वैश्यावृत्ति में, सब गंदे काम। कहता मैंने कोई काम विकारी पतित दुनिया का नहीं छोड़ा, इतना गंदा था मैं, गंदे नाले का कीड़ा था, ऐसे बोला। और मैं जब निकलता था तो लोग मेरे से डर करके अपने घर में छिप जाते थे, कब मार देगा, कब गाली देगा, कब क्या करेगा, लोग इतना घबरा जाते थे। और मैं कभी कभी इतना पी लेता था ना, जो मैं नाले पर लेटा रहता था, गंदे नाले पर, और कुत्ते मेरा मुंह चाटते थे। अब मुझे बाबा मिला और बाबा ने मुझे, बस रोने लगा गाड़ी चलाते कर, मेरे को क्या बना दिया, इसी जीवन में फरिश्ता बनाया, देवता बनाया। अभी मैं जाता हूं तो लोग इतना कहते, ब्रह्मा कुमारियों के पास क्या जादू है, इस राक्षस को बदल दिया। इतना खुश होते हैं, इतना सम्मान करते हैं, कहते हमारे सारे समाज की सेवा हो गई, मैं एक बदला हूं, मेरा सारा समाज मानने लगा ब्रह्मा कुमारियां हैं कुछ। आप समझ सकते हो क्या जीवन थी। कईयों की होगी, एक की थोड़ी, कईयों की ऐसी होगी, क्योंकि दुनिया ऐसी गंदी है। अब इस गंदी दुनिया में बाबा ने हमको गंध छुड़ाई ना, त्याग क्या किया, गंदगी का, विकारों का, बुराइयों का, आसुरी चीजों का, ये त्याग है क्या? ये बहुत बड़ा भाग्य है जो ऐसे जीवन बन गए। तो हम सब बहुत प्यार से, इस त्याग वृत्ति की भावना से, बाबा आपने मुझे क्या छुड़ाया, ये सब गंदी चीजें छुड़ा दी, गंदा खान पान छुड़ा दिया, गंदा व्यवहार छुड़ा दिया, बोल चाल छुड़ा दिया, और इसी जीवन में मुझे आपने देवता बना दिया। कल बनेंगे वो तो बात की बात है, इसी जीवन में आज क्या बाबा सिखा रहा था, मन शीतल हो, बुद्धि रहम दिल हो, वाणी में मधुरता हो, किसकी होगी, देवताओं की, कि आपकी हमारी है। चेक किया, बाबा की मुरली चलती है, ध्यान जाता है, क्या बाबा चाहता है मन शीतल सबका, कि अभी भी उत्तेजनाएं हैं, आवेग हैं, आवेश हैं, भरा हुआ है किचड़ा, इसके प्रति उसके प्रति नफरत है, घृणा है, द्वेष है। तपस्या क्या करेंगे अगर ये सब भरा रहेगा तो? इसको त्यागो, इसको निकालो, यही त्याग है। इतना शीतल बन जाए आत्मा, कुछ नहीं इसके अंदर किसी के प्रति, सब अच्छे है। जिस दिन हम ब्राह्मणों की निर्दोष वृत्ति बन जाएगी, उस दिन सहज तपस्वी जीवन बन जाएगी। जब तक दोष गुण अवगुण, चाहे किसी गुणों पर प्रभावित हैं, चाहे किसी से नफरत करके, घृणा करके उसे किनारा कर रहे हैं, तब तक तपस्वी जीवन का आनंद नहीं ले सकते। इसलिए कोई भी ऐसी दोस्ती न हो, ऐसे दोस्त न बनाना जो पर चिंतन, पर दर्शन, इधर की उधर, इधर सुनी उधर सुनाई, उधर की उधर किया, बड़े खतरनाक हैं वो। एक बार बाबा ने एक शब्द यूज किया था, सबसे खौफनाक लोग ब्राह्मण जीवन में वो हैं जो इधर की बात उधर करते हैं, बड़े खतरनाक हैं वो। किसी की भावना तोड़ देते, बड़ों के प्रति जो इतनी श्रद्धा रखते, मधुबन के प्रति, यज्ञ के प्रति, बाबा के प्रति, निमित्त के प्रति, कमी कमजोरी का वर्णन करके, इधर सुना करके, उधर सुना करके, किसी की भावनाओं को तोड़ देना, ये भी एक बहुत बड़ा घात है, ये बहुत बड़ी हिंसा है। इसलिए बहुत ध्यान रखना, अगर तपस्वी जीवन है तो इस तपस्वी जीवन को बहुत निर्दोष शीतल बनाना। योगी वो है जिसके अंग अंग शीतल हैं, जिसके अंग अंग सुगंधित हैं, जिसके अंदर कोई भी प्रकार की उत्तेजनाएं नहीं है, एक बाबा दूसरा न कोई, एक की लगन में मगन, सब कुछ बाबा से मिल रहा है, लो व्यक्ति से क्या चाहिए, क्यों ईर्ष्या करें किसी से, ये आगे जा रहा वो पीछे जा रहा, इसकी बहुत महिमा हो रही है मेरी नहीं हो रही है। अरे बाबा इतनी महिमा कर रहा है, इतना आगे बढ़ा रहा है, दिल तख्त पर बिठाया और नैनों पर पलकों पर बिठा के ले जाएगा, इससे बड़ा सम्मान और कौन देगा हमको। इसलिए दिखाते हैं योगियों का आसन जो है ना कमल आसन है। कमल कहाँ है? फूल के ऊपर कोई बैठ के योग कर सकता है क्या? आपको फूल दे बैठो भाई करो तपस्या, ये कमल आसन माना बिल्कुल हल्का, कोई बोझ नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई प्रकार का मैल नीचे का जाए दबा हुआ है, कीचड़ में परिवार है संसार है सब कुछ है उसका, लेकिन खुद अलग है, न्यारा है प्यारा है। तो हम सब जिस दिन संसार में सब कार्य व्यवहार में रहते हुए न्यारी प्यारी स्थिति में रहेंगे, कमल आसन पर रहेंगे, उस दिन तपस्वी जीवन बन जाएंगे, स्वतः तपस्या होगी। बाबा कहता एक दो घंटे के तपस्वी नहीं हो, चलते फिरते खाते पीते उठते बैठते आपका जीवन ही तपस्या है, दिखाई दे तपस्वी है त्यागी है, कुछ नहीं चाहिए, वृत्तियां बहुत अनासक्त है सब कुछ, साधन नहीं हम छोड़ रहे हैं, बाबा ने जो दिए हैं बहुत कुछ दिए हैं, लेकिन किसी दूसरे के साधनों से उनकी सुविधाओं से भेंट नहीं करते, जो भेंट करता है वो करोड़पति भी रोडपति है, तो कभी सुखी नहीं रहता, वो हमेशा सोचता रहता है इसके पास ऐसी गाड़ी है, इसके पास ऐसा मकान है, इसके पास ये है मेरे पास नहीं है, चाहे सब कुछ हो लेकिन सब कुछ होते हुए भी अगर वो भेंट कर रहा है किसी से तो प्रसन्न रह सकता है, खुश रह सकता है। इसलिए जितना बाबा ने दिया है हमें बहुत कुछ दिया है, तन इतना अच्छा दिया है जो हम भगवान को याद कर सकते हैं, भगवान के महावाक्य सुन सकते हैं, भगवान की सेवा के लिए हम जा सकते हैं, तो इससे बड़ा भाग्य और हमारा क्या होगा। अगर मन है इतना अच्छा बाबा ने दिया है, जो मन मनाभव हो जाते हैं, मन की शक्ति से हम कहीं दूर बैठी हुई आत्माओं को संदेश दे सकते हैं, मदद कर सकते हैं, मन कितना अच्छा है, सदोरा है, भटकता है देखना, कईयों का बहुत अभी तक भी भटकता है, इसको रोज अच्छा अच्छा भोजन खिलाओ, अच्छा अच्छा चिंतन करो, अच्छा विचार करो, अच्छी अच्छी भावनाएं रखो, ये मन बहुत शुद्ध हो जाएगा, मन मनाभव हो जाएंगे, मनसा सेवा करना शुरू कर देगा। तन है मन है जो बाबा ने दिया है धन, वो भी किसी से कम नहीं है, भले दिखावा नहीं है, इतना करोड़पति नहीं है, इतने बड़े साहूकार नहीं, लेकिन जितना है उतना बहुत है बाबा, आपने इतना दे दिया, इतना दे दिया जो किसी के आगे हाथ तो नहीं फैलाना पड़ता, दो रोटी खाएंगे प्रभु के गुण गाएंगे, क्या चाहिए, कभी भी अनुभव नहीं होता कि ये गरीब है, बाबा का कोई बच्चा गरीब है ही नहीं, है कोई गरीबी की रेखा के नीचे अभी तक, क्योंकि उसने अपने बैलेंस को अपनी बजट को बनाना चलाना सीखा है, जितनी कमाई है उतने खर्चे, ज्यादा नहीं दिखावा है। इसलिए हम सब भाग्यशाली हैं जो बाबा ने तन मन धन सब कुछ सफल करना सिखाया, व्यर्थ न जाए, व्यर्थ का त्याग है, बाकी समर्थ सब कुछ सफल हो रहा है। तो जितना बाबा ने दिया है, बाबा कहता अच्छा बच्चे तुम्हारे पास कुछ नहीं है ना, कई गरीब बच्चे बाबा के पास आते थे, बाबा मेरे पास कुछ नहीं, अच्छा बच्चे कोई बात नहीं, तुम सच्चे दिल से बाबा को बाबा कहो और थोड़ा सा कुछ कणा दाना सफल करो, उसको भी प्रेरणा दी बाबा ने, ऐसे नहीं कहा नहीं है तो छोड़ दो, अरे बच्चे बीज बोने का समय होता है, कितना भी गरीब होगा अपने घर का अपना पेट कम करके भी कम खा करके भी कुछ बीज खेती में डालेगा तो उसको रिटर्न मिल जाएगा, उसको कई गुना होकर के मिल जाएगा। ये भी समझ दी बाबा ने कि अगर गरीब भी है नहीं भी है तो भी संगम पर बीज बोने का समय है, कुछ न कुछ बीज बोलो, जो शक्ति है तन की मन की धन की समय की विशेषता की बाबा की सेवा में लगा दो, ये बीज अगर लग गया तो कई गुना होकर के भविष्य बन जाएगा, ये समझ दी है। इसलिए बाबा किसी से मांगता नहीं लेकिन समझदार जरूर बनाता है। और जो समझदार बच्चे हैं सब कुछ सफल करके बहुत निश्चिंत रहते हैं, कल की भी चिंता नहीं है तो काल की भी चिंता नहीं है। अगर चिंता होगी ना तो कभी तपस्या नहीं कर सकेंगे। इसलिए बहुत स्लोगन याद रखना, बीती को चितवो नहीं, चित्त में चिंतन में बीती को नहीं लाना। बीत गई ना कल तक, फुल स्टॉप। बीती को इसे क्या कहते हैं हिंदी में, भूतकाल। भूत, भूत किसी के सामने आता डर लगता है ना, बीत गई ना भूतकाल है वो, उसको याद नहीं करो, फुल स्टॉप लगा दो। और आने वाले भविष्य की चिंता नहीं करना। क्यों क्यों चिंता नहीं करना, क्यों नहीं करना? अगर वर्तमान पर हमारा पूरा ध्यान है तो कल तो अच्छा होना ही है। वर्तमान का ही दर्पण कल है ना, वर्तमान को कहीं पर भी व्यर्थ नहीं जाने। संकल्प, श्वास, समय, संपत्ति सब सफल हो, अगर आज अच्छा है तो कल अच्छे से अच्छा होने वाला है। इसलिए बाबा अपने बच्चों को एक टाइटल देता है कि मेरे बच्चे त्रिकालदर्शी हैं, नॉलेज फुल हैं। तो त्रिकालदर्शी और नॉलेज फुल बन करके बहुत ऊंचे सम्मान में रह करके चिंतन और चिंता से मुक्त रहो। तपस्या के लिए अगर चिंतन और चिंता से मुक्त हैं तो सहज जीवन में अनुभव होगी, सहज योगी जीवन है, तपस्वी जीवन है। तो इसलिए तपस्वी जीवन में एक बाबा के साथ प्यार चाहिए, लगन चाहिए। दूसरी एकाग्रता बहुत अच्छी चाहिए, मन और बुद्धि एक टिक एकाग्र हो जाए। और तीसरी संकल्पों में बहुत दृढ़ता चाहिए। दृढ़ता में एक बल एक भरोसा, एक बाबा दूसरा न कोई, एक में पूरा भरोसा है कि मेरा तो एक है, दूसरा कोई नहीं मुझे चाहिए। सर्व समर्थ सर्व शक्तिवान हजार भुजाओं के साथ हम बच्चों के साथ रहता है। इसलिए कभी भी छोटी दिल नहीं करना। दो बहुत बड़ी बीमारियां हैं, एक दिल शिकस्त होना। दिल शिकस्त, दिल शिकस्त जानते हैं, मैं तो कुछ भी नहीं कर पा रही हूं, मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं है, मेरा तो योग भी नहीं लगता, मेरा तो मन भी बहुत भटकता है, मैं कोई काम की नहीं हूं। निराश, उदास, हताश, ये कौन सी भाषा है? बाबा कहता है ये दिल का रोगी है, दिल से कष्ट हो गया, उसकी ब्लॉकेज जो है ना उमंगुस्सा की ब्लॉक हो गई, सारी जो आर्टरीज है वो ब्लॉक हो गई, खून दौड़ना बंद उमंगुस्सा का। ये बहुत खतरनाक बीमारी है, कभी भी अटैक आ सकता है, फेल भी हो सकता है, हार्ट फेल भी हो सकता है। इसलिए कभी भी निराश उदास नहीं होना। बाबा आपने जो दिया है बहुत कुछ दिया है, मेरे जैसा कोई नहीं दुनिया में, नहीं इतना नशा रखो, इतना ऊंचे सम्मान में रहो। लेकिन कभी कभी सम्मान में रहते रहते अभिमान आ जाता, ये दूसरी बीमारी, मैं सबसे बढ़िया सबसे बड़ा हूं, मैं बुद्धिमान हूं, मैं प्लानिंग बुद्धि हूं, मैं सर्विसेबल हूं, मैं इन्वेंटर हूं, मैं बहुत अच्छा सेवा करने वाला सेवाधारी हूं। बाबा कहता है इस बुद्धि का भी मारो ना, इसका भी त्याग करो, मैं कहां से बकरे बन गए, इस मैं को बलि चढ़ा दो, यही बकरे की बलि है। अहंकार अगर आ गया ना तो ये बहुत बड़ी कैंसर की बीमारी है, खतरनाक, अहम और बहम पता नहीं चलता है, अंदर अंदर गांठ बन जाती और वो गांठ कैंसर की हो जाती है, किसी दिन भी जान जा सकती है, कोई डॉक्टर बचाएगा नहीं उसमें। अहम और बहम बहुत खतरनाक बीमारी है ब्राह्मण जीवन में। इसलिए ना कभी अहम में आए, कितनी भी महिमा कोई करे, कितनी भी विशेषताएं सुनाए, कितना भी बाबा ने मेरे से कराया, बाबा आपने करा दिया, मेरा भाग्य। हमारी इतनी बड़ी दादी प्रकाश मणि को देखा है? किसने किसने दादी को देखा, हाथ उठाओ, लगभग सभी ने देखा है। कभी भी दादी ने अपनी महिमा स्वीकार नहीं की। एक दिन की बात सुनाता हूं मैं, लास्ट दिनों में 3-4 साल तक दादी ऊपर नहीं आती थी, बीमारी के कारण, तबीयत के कारण, क्योंकि यहां ऊपर पांडव भवन में माउंट के कारण ऊंचाई पर थोड़ी ऑक्सीजन में कमी होती। तो डॉक्टर्स ने कहा था दादी आप ऊपर नहीं जाना, तो डॉक्टर्स के कहने का 2-3 साल ऊपर नहीं आई। और हम लोग रोज आते जाते थे, तो एक दिन गए हम सीधा ही यहाँ ऊपर से उतर के गए, तो दादी सोफे पर बैठी थी, मैं जाके बाजू में बैठ गया। कहाँ से आए? दादी ऊपर से, पांडव भवन से। कैसे चल रहा है? ऐसे प्रश्न किए, कैसे चल रहा है सब? बहुत अच्छा चल रहा है, सब ठीक है, ज्ञान सरोवर ठीक है। मैंने कहा दादी ठीक है, सब ठीक चल रहा है। हमने हाँ ठीक, बहुत अच्छा चल रहा है। पूछ रही कैसे चल रहा है, सब अच्छा चला तो कैसे चला, ऐसे पूछा। तो दादी आपकी योग बल से चल रहा है, आपके संकल्प शक्ति से चल रहा है। तो मेरे कैसे कहते, आंख दिखाते, मेरे संकल्प से चल रहा है। क्या बोलता है? बाबा के संकल्प से चल रहा है, समझ गए? नहीं, इतना उन्होंने अपने मैं को मारा हुआ था कि हम सब जानते हैं। आज ये तपस्वी आत्माएं, शुभ चिंतक आत्माएं, महान आत्माएं जो भगवान के समान हैं, दादियां, इनके शुभ संकल्प से आज यज्ञ चल रहा है। बाबा तो है ही, वो तो बैकग्राउंड है, बैक में बैठा है, लेकिन सामने जो हैं उनके संकल्प कितने शुभ हैं, जो आज इतना बड़ा यज्ञ, लाखों लोग आते हैं और जाते हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, रह रहे हैं, खुश हो रहे हैं, रिफ्रेश हो रहे हैं, शक्ति भर रहे हैं। किससे? बड़ों के शुभ संकल्प की शक्ति से। लेकिन उन्होंने कभी यह स्वीकार नहीं किया मेरे संकल्प से सब चल रहा है। सदा का बाबा करा रहा है, बाबा करा रहा है, बाबा करा। कितना बड़ा त्याग है, और यही त्याग तपस्या है। जिस दिन हम सब ने ये बात अंदर से पक्की कर ली कि सब कुछ कराने वाला बाबा करा रहा है, हम सब निमित्त मात्र हैं, जो कराना चाहे करा ले, कोई भी कर्म गलत नहीं हो सकता, इतना हमारा जरूर ध्यान है, लेकिन करण करावनहार बाबा जो कराएगा वो अच्छा ही कराएगा। ऐसी वृत्तियां जिस दिन बन जाएंगी, उस दिन तपस्वी जीवन बन जाएगी। लगन में मगन है, दृढ़ता का संकल्प है, एक बल एक भरोसा, एक में संपूर्ण विश्वास है, निश्चय अटल है, और कहीं पर भी आंख नहीं डूबती, माना वो तपस्वी जीवन है। तो ऐसे तपस्वी बन करके, त्याग का एग्जाम्पल बन करके, हम सबको बाबा को प्रत्यक्ष कराना है। सेवा त्याग और तपस्या का फल है। जो त्यागी और तपस्वी है, सेवा उनके पीछे पीछे आती है, सेवा के लिए उनको भागना नहीं पड़ता। सेवा के लिए सिर्फ 3 बातें ध्यान में रखनी है। एक, बहुत अंदर की सुख देने की भावना। सेवा माना सुख देना। हम सेवा कर रहे हैं, खुद दुखी हो रहे हैं, दूसरों को दुखी कर रहे हैं, खुद अपसेट हैं, दूसरे अपसेट हैं, उसको सेवा नहीं कहा जाता। वो तो कोई नाम मान सान के लिए कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, लेकिन सच्ची सेवा उसको कहा जाता है जिससे सब आत्माओं को सुख मिले। एक दया भावना है, एक दातापन की भावना है, और एक दयालु कृपालु दृष्टि है। जहां दातापन है, मुझे कोई से कुछ लेना नहीं है, जो उनको देना है सफल करना करेंगे, मैं देने की लेने की भावना से दे नहीं रहा हूं। बाबा आपने मुझे बहुत कुछ दिया है, जितना ज्ञान दिया है, गुण दिए हैं, शक्तियां दी हैं, सब में माला माल बनाया है, अब मेरी दृष्टि से, मेरे बोल से, मेरे संकल्प से सबको कुछ न कुछ मिल रही, हम दें, दाता बने। तो सेवाधारी मास्टर दाता होगा, सेवाधारी मास्टर दयालु होगा, सेवाधारी बहुत रहम दिल होगा, बहुत रहम अंदर की तरस भावना होगी, हर आत्मा इन दुखों से छूट जाए, इन विकारों से मुक्त हो जाए। तो ऐसे त्यागी, तपस्वी और सेवाधारी बन करके हम सब अपनी प्रैक्टिकल जीवन से बाबा को प्रत्यक्ष करें। वाणी से बाबा की प्रत्यक्षता अभी तक नहीं हुई है, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे आपकी चलन, आपके चेहरे से बाबा दिखाई दे। तो जब हम त्यागी और तपस्वी जीवन बना लेंगे तो बाबा इस दृष्टि से दिखाई देगा। ठीक है, ओम शांति। चलो 3 मिनट के लिए इस भ्रकुटी आसन पर बैठो तपस्वी बन करके, और बाबा की स्नेह में समा जाओ।
तुम्हारी ओ प्यारे भगवान, झलक में भर के दिखा रही हूँ। फलक से हम यही गा रहे, कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवान, पलक में भर के दिखा रहे।